ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार मेरे साथ सब लोग बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सृष्टि सेक्टर 2 के सभी रहीय वासियों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। मनुष्य जीवन में बहुत सारे पवित्र काल आते रहते हैं। मनुष्य जीवन ही बहुत एक पवित्र काल है। हमारे जीव की यात्रा में जो 84 लक्ष योनि में से हम जाते हैं, उनमें मनुष्य जीवन सबसे पवित्र काल है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य जीवन के समय का उपयोग करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ये पवित्र काल है। और उस मनुष्य जीवन के पवित्र काल में भी बहुत सारे पवित्र काल आते हैं। हर रोज़ एक पवित्र काल आता है, ब्रह्म मुहूर्त सवेरे 3 से 6 बजे तक। हर 15 दिन में एक पवित्र दिन आता है एकादशी का, हर महीने में 2 एकादशी आती हैं। और हर साल में 4 महीने आते हैं जो पवित्र काल के रूप में गिने जाते हैं। और 4 महीने के पवित्र काल में एक पवित्र काल आता है आखिरी चतुर्मास्य का महीना, जिसे हम अश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा का काल को हम दामोदर मंथ कहते हैं। दामोदर मास इसको आमतौर पर कार्तिक कहते हैं, लेकिन वो आधा अश्विन का दूसरा हिस्सा और कार्तिक का पहला हिस्सा मिलकर वो 30 दिन का कालावधि बनता है। ये महीना इतना महत्वपूर्ण है कि स्कंद पुराण, पद्म पुराण और गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण और बहुत सारे अन्य पुराणों में इस महीने की महिमा गाई गई है। इसमें भगवान की जितनी भी बाल लीलाएं हैं, वो अधिकतर बाल लीलाएं इस महीने में संपन्न हुई है। और उसमें से सबसे प्रधान लीला जो है, जिस पर इस महीने का नामकरण हुआ है, वो है दामोदर लीला। तो आप सब लोगों को संक्षेप में हम दामोदर लीला बताएंगे। वैसे श्रीमद् भागवत में उसका बहुत ही सुंदर विस्तार रूप में वर्णन दिया है, अन्य शास्त्रों में अधिक विस्तार में उसका वर्णन दिया है। संक्षेप में, दीपावली के दिन ये लीला हुई थी। दीपावली के दिन माता यशोदा ने सोचा कि सभी मेरी सेविकाएं बहुत व्यस्त हैं, तो आज मैं अपने हाथों से ही दही का मंथन करूँगी और मेरे लाला के लिए मक्खन बनाऊँगी। तो वो उन्होंने मक्खन बनाना आरंभ किया, दही का मंथन करना आरंभ किया। तब कृष्ण भगवान बाल कृष्ण सो रहे थे, जग गए, उठे और सीधे माता जी के पास आए, उनका पल्लू खींचा, यानी मुझे दूध पिलाओ, स्तनपान कराओ, ऐसे बताया। तो माता ने दही मंथन करना छोड़ दिया, बालक को स्तनपान कराया। उसने में माताजी को ऐसे लगा कि चूल्हे में जो दूध रखा है वो उबल रहा है, वो थोड़ा सारा उबल के अग्नि में गिर रहा है, तो उसकी जलने की बू आई। तो तुरंत बालक को नीचे रखा और वो किचन में भागी, वो दूध को संभालने के लिए जो आगे लाला के लिए मिठाई बनाने के लिए काम आने वाला है। तो फिर बाल कृष्ण को बहुत क्रोध आया कि मुझे स्तनपान करते हुए छोड़कर वो कैसे जा सकती है, जब मैं स्तनपान करना चाहता हूँ तो कोई भी विश्व में और महत्वपूर्ण घटना नहीं हो सकती या कोई काम नहीं हो सकता जिसके लिए माँ को जाना चाहिए। तो शायद सोचते हैं कि कुछ ना कुछ मैं भी करूँगा। तो जिस मथनी से दही मंथन हो रहा था वो मटके में था, उसको उठाया और मटके को एक फटका दे दिया तो मटका भंग हो गया। मटका भंग होने पर जो ऑलरेडी थोड़ा मक्खन बना हुआ था और छाछ भी बन गया था, तो मक्खन तैर रहा था, सब मक्खन और छाछ जो है वो जमीन पर फैल गया। थोड़ा मक्खन खाया, फिर डर लगा कि अरे मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया, तो वहाँ से भागे, उसी मक्खन में से, उसी छाछ में से चलते चलते भागे। छाछ जहाँ तक फैला हुआ था उसके आगे भी गए तो वहाँ पर वो छाछ के चरणों के चिन्ह निकले। अगले कमरे में गए, वहाँ पर मटका लटका के रखा था, वो एक उखल पड़ी थी, उस उखल को लिया, उस पर चढ़े और मटके को तोड़ा, बंदरों को और दोस्तों को बुलाया और बंदरों को भी अपने हाथ से खिलाया और दोस्तों को भी हाथ से खिलाया और खुद भी हाथ से खाने लगे। दोनों हाथ से खा रहे हैं, सबको खिला रहे हैं। उतने में मैया वापस आती है, क्या कहते हैं उसको, रसोई से, उस पात्र को नीचे रखकर दूध संभाल कर, और देखते हैं कि पूरा बड़ा मटका जो है फूटा हुआ है, मक्खन जमीन पर तैर रहा है, छाछ फैला हुआ है। तो सोचते हैं मेरा बालक बहुत ज़्यादा उद्दंड हो गया है, उसको दंड देना बहुत ज़रूरी है। एक डंडा उठा दिया है और वो जो पैरों के निशान है उसको ढूंढते ढूंढते अगले कमरे में जाती है। वहाँ क्या देखती है, बालकृष्ण जो है उसकी पीठ है उनकी तरफ और सामने सब बंदर और ग्वाल बाल बैठे और माखन खा रहे हैं, लेकिन जो सामने बैठे हैं वो माता को देखते हैं पीछे, तो वो ऐसे आंखें बड़े करते हैं और भाग जाते हैं। तो बालक को भी पता चलता है कि माता जो है वो डंडा लेके पीछे खड़ी है, तो वहाँ से भागने लगते हैं। फिर शुरू होता है भागने का सिलसिला, बालक आगे आगे भाग रहा है, माता पीछे पीछे भाग रही है। फिर बहुत देर तक पूरे घर में भागती है तो माता थक जाती है, बहुत प्रयास करती है, चेहरे पर पसीने के बिंदु आ जाते हैं। फिर कृष्ण से सोचते हैं कि अरे माता को और कष्ट देना नहीं चाहिए, मुझे पकड़ना चाहती है, चलो मैं उनकी पकड़ में आ जाता हूँ। तो माता पकड़ती है बालक को, तो पहले बालक जोर जोर से रोता है, कहता है डंडा नीचे फेंक दो, मुझे डंडा का बहुत डर लग रहा है। तो डंडा नीचे फेंकती है, फिर कहती है तू बहुत शैतान हो गया है, बहुत उद्दंडता कर रहे हैं, अभी मैं तुझे उस उखल से बांध देती हूँ जो उखल के साथ में तुमने ये गुनाह किया है। तो डोरी लाती है और उखल से बालकृष्ण को बांधने का प्रयास करती है। जितनी बार लगाती है दो उंगलियां वो डोरी छोटी पड़ जाती है, तो सारी डोरियां मंगाती है, जोड़ जोड़ के जब बांधने का प्रयास करती है फिर दो उंगलियां कम पड़ती है। फिर पड़ोसियों के गोपियों के सारे घर से डोरियां मंगाती है, कहते हैं वो उस दिन बड़ा डोरियों का उत्सव हुआ, फेस्टिवल ऑफ रोप्स, सारा जोड़ जोड़ के जितना भी जोड़ा फिर भी उतना सा पेट कृष्ण का उधर उसको बांध नहीं सकी। वो रोज उसको कमर पट्टा बांधती है, रोज धोती बांधती है, रोज सब कुछ वस्त्र पहनाती है, इतनी सारी दोरियां जोड़ने पर भी वो उनको बांध नहीं सकी। फिर कृष्ण को लगा माता फिर थक गई प्रयास करके, अभी दोरी से बंध जाते हैं, तो फिर वो दोरी से फिर गांठ लगती है और कहते हैं कि अभी मुझे बहुत सारे काम है, अभी तुम यहीं पड़े रहो, यहां से हिलना नहीं। तो कृष्ण बहुत रोते हैं, क्या नहीं, रोने का नाटक करते हैं। फिर क्या होता है, माता चले जाती है, सब बालक आते हैं, तो प्रयत्न करते हैं कि उसका वो गांठ जो है वो छुड़ाए, लेकिन माता ने वात्सल्य से बांधी हुई गांठ जो है वो दोस्तों के द्वारा छूटती नहीं है। बलराम जी आते हैं, वो कहते अरे कान्हा तुम्हें क्या हो गया, वो रोता है माता ने मुझे बांध दिया। तो बलराम जाते हैं, कृष्ण यशोदा से कहते हैं मैया जी आप जानते हो क्या, वो भगवान है, लीला पुरुषोत्तम गोलोकेश्वर है, और मैं जानता हूँ मैं कौन है, मैं अनंत शेष हूँ। तो माता कहती है सभी अवतारों को मेरे घर में आना था क्या, मतलब उनके सत्य को, सत्य वचन को वो ठुकरा देती है। फिर सब लोग परेशान हो जाते हैं, निकल जाते हैं, अकेले कृष्ण बचते हो, कहते हैं भाई और कुछ करूँगा मैं, माता को सबक सिखाऊंगा। फिर उसी उखल को लेकर वो घुटवन 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 चलते चलते पूरे महल को पार करके, आंगन को पार करके जंगल में आ जाते हैं, और वहाँ पर उनकी जो उखल है जिससे उनको बांधा गया है वो दो पेड़ों में अटकती है, और बालक कृष्ण उसको खींचते हैं तो बहुत भयंकर ध्वनि करके वो दोनों पेड़ जो वो गिर जाते हैं, दोनों के बाजू में गिर जाते हैं एकदम पास में, बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है धड़ाम। तो सब लोग भाग के आते हैं और खेत से नंद बाबा भाग के आते हैं पिताजी, और कहते हैं किसने किया किसने किया, अगर वो पेड़ इनके ऊपर गिरता यहाँ से यहाँ से तो क्या हो जाता, किसने बांधा किसने बांधा, आकर तुरंत उसको छुड़ा देते हैं और गले लगा लेते हैं। तो कृष्ण कहते हैं मैया ने बांधा था, अभी मैं मैया के पास नहीं जाऊँगा, बड़े गुरु जी कौन नहीं नहलाएगा, तू बाबा तू नहलाएगा, दूध कौन पिलाएगा, तू पिलाएगा, मैं गैया का दूध पीऊंगा, फिर वस्त्र कौन पहनाएगा, तू पिलाए, तू पहनाएंगे, आप पहनाएंगे, इस तरह से बाबा को सारे जो माता काम करती है आप करेंगे, मैं मैया के पास नहीं जाऊंगा। उतने मैया भी भाग के आई हुई, वो देख रही है कि बाबा के गोद में है और मुझे देखने को भी तैयार नहीं है, और सारी कार्य जो है वो बाबा करेंगे ऐसे बोल रहे हैं, तो वो बेहोशी हो जाती है कि मेरी सारी सेवाएं जो है वो मुझसे छीन गई है और लाला मेरे पास नहीं आना चाहते। तो फिर बाबा कहते देखो मैया कितनी दुखी हो रही है, तो मुड़ के देखते तो मैया रो रही है, आंखों से नदियां बह रही हैं अश्रुओं की, तो झट से मैया बोलकर मैया के पास जाते हैं और गोद में चले जाते हैं। तो ये सुंदर लीला जो है इसको दामोदर लीला कहते हैं। दाम यानी डोरी, उदर यानी पेट। जिस दिन मैया यशोदा ने डोरी से कृष्ण के उदर को यानी पेट को उखल से बांधा था, उस लीला का नाम है दामोदर लीला। वो दीपावली के दिन में हुई थी, इस साल वो 13 नवंबर को आने वाली है। तो इस महीने में इस लीला का हम गुणगान करते हैं और बाकी भी बालक लीला का जो कृष्ण के बाल लीलाएं हैं। आप लोग बैठ जाइए माता जी, थोड़ा सा बस प्लीज जस्ट डोंट डिस्टर्ब, सिट डाउन। हरे कृष्णा, 20 मिनट की कथा है, उसके बाद में आप जो करना है वो करो। तो इस महीने में बहुत सारी बाल लीलाएं कृष्ण की हुई है। गोवर्धन को कृष्ण ने इस महीने में उठाया है, गोवर्धन की पूजा, गोवर्धन की परिक्रमा इस महीने में हुई है। भगवान ने रास लीला का भी आयोजन इसी महीने में किया, कल के दिन रास पूर्णिमा थी। बहुलाष्टमी, राधा कुंड श्याम कुंड का आविर्भाव भी इसी महीने में हुआ है। यशोदा माता गर्भवती कृष्ण के लिए भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुई थी। इस प्रकार से यमद्वितीया, जहाँ पर हम यमराज और यमुना का भैया दूज का कार्यक्रम भी इसी महीने में होता है, बलि प्रतिपदा, बलि महाराज भी इसी महीने में आते हैं पृथ्वी को देखने के लिए, नरकासुर का वध भी इसी महीने में हुआ था नरक चतुर्दशी के दिन, धन्वंतरी का जन्म भी इसी महीने में हुआ था धन त्रयोदशी के दिन। इस प्रकार से बहुत सारे उत्सवों का एक कलेक्शन इस महीने में है और विशेष करके भगवान की बाल लीलाएं इसी महीने में संपन्न हुई है। तो इस महीने में दीपदान का कार्यक्रम होता है, तो दीपदान का महत्व हमको सबको पता होना चाहिए। सारे वेदों के जितने भी प्रमुख पुराण है उसमें दीपदान कार्यक्रम का महत्व बताया गया है। दीप जो है वो साधारण तौर पर हम घी से बनाते हैं, तेल से बना सकते हैं और भी चीज से बना सकते हैं, लेकिन घी का दीप उत्तम माना गया है। इस महीने में हर दिन एक घी का दीपक कृष्ण को हम जलाते हैं। कृष्ण हो या राम हो या नरसिंह भगवान हो, वामन देव हो, विष्णु हो और विष्णु के सारे अवतार हो, विष्णु तत्व, इनमें से किसी को भी हम दीप दान कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से बाल कृष्ण, दामोदर भगवान, इनको दीप दान करने का महत्व इस महीने में है। एक दीप जब हम अर्पण करते हैं तो कहते हैं जन्म जन्मांतर कोटि कोटि कल्पों के जो हमारे संचित कर्म है वो सब नष्ट हो जाते हैं। एक दीप के प्रकाश के सामने कोई भी पाप टिक नहीं सकता है, सब नष्ट हो जाते हैं। उन दीपकों के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित हुए मार्ग से हम वैकुंठ गमन करते हैं जब हमारा देहांत हो जाता है। इस जीवन के अंत में जब हम भगवान के पास जाते हैं तो जितने दीपक हमने भगवान को अर्पण किए हैं उनका सारा कलेक्टिव प्रकाश जो है वो हमारे मार्ग को प्रकाशित करता है। इस महीने में विष्णु के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में दीपों की मालाएं जब हम प्रस्तुत करते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इसलिए दीपावली में हम हर दिन हमारे घरों में, आंगन में, हमारे गैलरी में, हमारे सब जगह पर सुंदर दीपों की आरास करते हैं, क्योंकि इस महीने में दीप की बहुत बड़ी शक्तिशाली आध्यात्मिक जो शक्ति है, प्रभाव है, वो हम सबको प्राप्त होता है। इसलिए हर दिन हम सब लोग सुबह और शाम घर में, मंदिर में, प्रोग्राम में, कार्यक्रम में, सत्संग में, सब जगह पर ये दामोदर अष्टक गाते हैं। इस दामोदर अष्टक में ये जो भगवान को बांधने की लीला है उसका वर्णन किया गया है, और ये गाते गाते फिर सब भक्त एक एक करके भगवान को दीप दान करते हैं, चाहे वो जगन्नाथ जी हो, चाहे वो राधा कृष्ण हो, सीताराम लक्ष्मण हनुमान हो, या विष्णु लक्ष्मी हो, लक्ष्मी विष्णु हो, लक्ष्मी नारायण हो, या किसी भी परम भगवान का स्वरूप हो, उसको हम ये दीप दान कर सकते हैं। दीपदान करना बहुत आसान है। एक आपको पंडती चाहिए या तो निरंजन चाहिए, एक बाती चाहिए जो घी में डुबोई हो, माचिस चाहिए, बस उसको जलाना है। और अगर दामोदर अष्टकम बाय हार्ट भी नहीं है तो भगवान को प्रेम से दीपदान करना है। उस एक दीपदान करने से भगवान हमारे हो जाते हैं। इस जीवन का उद्देश्य है कि भगवान को अपना बनाना, हम भगवान के होना। और वो कार्य इस महीने में बड़ी सहजता से दीपदान, केवल दीपदान करने से भगवान की मर्जी, भगवान का स्वीकृति, हम भगवान, हमें भगवान स्वीकार करते हैं। हम भगवान को दीपदान के साथ पुकारते हैं कि हमें स्वीकार करो, भगवान हमको स्वीकार करते हैं। तो बहुत सिंपल कार्यक्रम है। और विशेष रूप से ये आपको अनुरोध है कि ये कोई भी अपने घर पे कर सकता है। आप दो चार पड़ोसियों को बुलाओ, दो चार रिश्तेदारों को बुलाओ, परिवार के लोगों को बुलाओ, 25, 20, 15 आपको जैसे मुमकिन हो दीप का आयोजन करो, पंडती रखो मट्टी वाली या तो स्टील की निरंजन रखो, नॉन डिस्पोजेबल या डिस्पोजेबल जैसे भी हो, उनको दीप प्रज्वलित करके दे दो और हम गा सकते हैं आपके लिए, या तो आप स्वयं भी गा सकते हैं दामोदर अष्टकम जो अभी गाने वाले हैं, और बड़े प्रेम से भक्ति भाव से कृष्ण को उसको अर्पण करो। अपने बालकों को, अपने परिवार के लोगों को ये सुनहरा अवसर दो आप, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी वैदिक संस्कृति है जिसमें हम अपने बालकों को सिखाते हैं कि भगवान कौन है, हमारे त्यौहार क्या है, कैसे वस्त्र पहनते हैं, उत्सव कैसे मनाते हैं, और दीपदान करने से क्या लाभ होता है, सब बालकों को समझाना चाहिए ताकि वो भी ये संस्कृति अपनाएं, और जब बड़े हो जाएंगे तो अपने परिवार को, सदस्यों को, अपने बच्चों को समझाए, और पीढ़ी पीढ़ी से आगे जाकर ये नॉलेज जो है वो आगे संक्रमित होता रहे। तो जिन लोगों को अपने घर में ये दीपदान कार्यक्रम करना है वो किसको नाम देना है? हाँ हाँ, वो काउंटर जहाँ बैठा है, आप अपना नाम दीजिए। आपको जो भी मदद चाहिए गाने के लिए, अरेंज करने के लिए, वो हम आपको दे सकते हैं। और अपने सेक्टर में या सेक्टर के बाहर कहीं भी आपके घर में या आपके ससुराल में, आपके मायके में, आपके भाई के घर, आपके बहन के घर, आपके फ्रेंड के घर, आपके स्वयं के घर, आप ये सुंदर कार्यक्रम कर सकते हैं। केवल 30 मिनट का कार्यक्रम है ये। आप लोगों को समय पर बुलाइए, ये 10 मिनट में भजन गा सकते हैं, उतने में दीप प्रज्वलित कीजिए। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति इस महीने में दूसरे को दीप प्रज्वलित करके दूसरे के हाथ में देता है, और वो व्यक्ति अगर कृष्ण को या विष्णु को दीप अर्पण करता है, उसे भी महान पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए अभी देखो, दो कोई व्यक्ति खड़े होने वाला है, वो आपको दीप जला के हाथ में देने वाला है, उनको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलने वाला है। आप एक दीप अर्पण करेंगे, वो सब लोगों को दीप प्रज्वलित करके देंगे, उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और ये लाभ आप सुबह शाम स्वयं अपने घर पे ये 30 दिन तक ले सकते हैं। ये मत समझना कि आज आपको आना है और एक दिन घर पे प्रोग्राम करना है, फिर आप बाकी 28 दिन कुछ नहीं करना है। हर दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक सवेरे और शाम, या तो केवल एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ज़रूर इतनी व्यवस्था करके दीपदान करना चाहिए। हमारे घर में ऑलरेडी हमारे टिफिन, अपने एक डिब्बा में बाती घी में भिगोकर महीना भर के लिए रेडी रखिए। जब भी आए दिल करेगा तो हम दिन में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार उसको दीपदान करते रहते। उसी प्रकार से आप एक छील का डिब्बा लीजिए, एक बार बाती खरीद लीजिए, उसको घी में डुबा कर एक ही बार रख दीजिए, तो बार बार आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अभी घी किधर है, कहाँ रखा है, कब भीगा, कब भीगेगा, कब जलेगा, भीगा का ही रखना है। ये बहुत बड़ी बुद्धिमानी की बात है। छोटे से कार्य से बड़ा आध्यात्मिक लाभ लेना है इस महीने में। इस महीने में बाकी दिनों में, बाकी महीनों में दीपदान करने के साथ 1,00,000 गुना अधिक दीपदान करने का लाभ मिलता है। और उसमें एकादशी भी आएगी, उसमें भी अनेक गुना आपको लाभ मिलेगा। उसमें दीपावली आएगी, उसमें नरक चतुर्दशी आएगी, यम द्वितीया आएगी, कार्तिक पूर्णिमा आएगी, और बहुत सारे उत्सव आएंगे, उन दिनों में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। तो भगवान का ये ग्रेट ग्रैंड सेल है। भगवान साल भर कृपा करते हैं, लेकिन कार्तिक महीने में जो भी आप करते हैं, समझो भगवान के नाम का जप आप कर रहे हैं, तो उसका आपको एक लाभ मिलेगा। लेकिन कार्तिक महीने में वो लाभ करेंगे तो 1,00,000 गुना अधिक लाभ मिलेगा आपको। वही आप वृंदावन में जाएंगे, मथुरा जाएंगे, वहाँ पर कार्तिक महीने में दीपदान करेंगे, उसका और 1,00,000 गुना लाभ मिलेगा। तो भगवान क्या चाहते हैं, आप लोगों को, हम लोगों को, सब लोगों को बहुत ही आसानी से, सहजता से उनकी कृपा प्राप्त हो, इसलिए इस महीने का विशेष आयोजन भगवान ने किया है। तो कार्तिक इज द ग्रेट ग्रैंड स्पिरिचुअल सेल ऑफ श्री कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान कृपा का अनंत वर्षाव कार्तिक में करते हैं। तो आइए हम सब लोग आपको हृदय से विनती करते हैं, हर साल हम कार्तिक महीने के अंत में ये दीपदान करते थे, तो हमने सब लोगों को बताया कि इसको शुरुआत में करो ताकि कार्तिक महीने के अंत में आपको प्रेरणा मिलेगी कि हमको करना है, तो आप कहेंगे आप लास्ट दिन है अभी, कल तो खत्म हो जाएगा। इसलिए इस बार शुरू में कर रहे हैं ताकि आपको आज तो यहाँ मौका मिलेगा ये दीपदान करने का, और 29 दिन कम से कम 58 बार आप भगवान को दीपदान करके ऐसा आध्यात्मिक पुण्य आप अर्जित कर सकते हैं जो इस जीवन में इतना पर्याप्त होगा, हमको विश्वास नहीं होगा इस बात पर, लेकिन शास्त्र में लिखा है कार्तिक में प्रेम से दीपदान करने वाला व्यक्ति सीधे भगवत धाम जाता है इस जीवन के अंत में। यह हम नहीं कह रहे, भगवान स्वयं कह रहे हैं, जिनको आपको उनके धाम में ले जाना है वो स्वयं वादा कर रहे हैं, स्वयं वचन दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि इतना सा सादा सीधा सादा कार्य जो है सिंपल, तो आप कर ही सकते हैं। एक एक मोबाइल में 10-15 हज़ार रुपये खर्च आते हैं, एक दीपदान में कितना खर्च होगा? लेकिन सबसे बड़ी बात वो खर्च की नहीं है, सबसे बड़ी बात अपनी भावना की है। जिस भावना के साथ प्रेम के साथ दीपदान करेंगे वो प्रेम भगवान स्वीकार करते हैं। बाकी पापों से मुक्ति, जीवन से मोक्ष की प्राप्ति, ये सेकेंडरी बेनिफिट है। इसलिए उस लाभ के हेतु दीपदान मत करना, भगवान के लिए, उनके संतुष्टि के लिए, उनके आनंद के लिए प्रेम और भक्ति के साथ दीपदान करना। फिर जो प्रेम और भक्ति के साथ दीपदान करता है उसको बाकी पापक्षालन, मोक्ष प्राप्ति, ये सभी सारे जितने भी लाभ है भगवान देते रहते हैं और देते ही रहेंगे। तो हम आपको हृदय से अनुरोध करते हैं, एक तो अपने घरों में इसका प्लानिंग कीजिए, आप किसको बुलाना है उसकी प्लानिंग कीजिए। रोज़ हमारे राधा गिरधारी मंदिर में सुबह और शाम दीपदान होता है, वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, जैसे आज ज्वाइन हो गए हो। और जिनके घर में दीपदान हो रहा है बिना बुलाए उनके घर पे चले जाओ, दीपदान करके चले आओ, क्योंकि कलयुग में एक साथ में आकर करने की जो आध्यात्मिक क्रियाएँ हैं उसका महत्व है। कॉन्ग्रीगेशनल एक्टिविटी, कमिंग टुगेदर एंड डूइंग स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। इतना भाषण देकर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।